मानुष जीवन तब दुर्लभ होई, साची प्रीत प्रभु चरण पर। ऐसा कहा जाता है 84 लाख योनियां जो हैं जीव की, उसमें से सबसे श्रेष्ठ जन्म जो है वो मानव है। मानव का जन्म लेने के बाद भी यदि मनुष्य पापी जीवन व्यतीत करे तो क्या कोई भी उसको मनुष्य मानने को तैयार होता है क्या? लोगों के मन में यही इच्छा होती है कि जितनी जल्दी ये संसार छोड़ के चला जाए उतना ही इसका भी भला है और संसार का भी भला है। लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के साथ साथ उसमें एक मौका भी मिलता है मनुष्य को, वो ईश्वर भक्ति भी कर सकता है, सदाचारी जीवन भी व्यतीत कर सकता है, परोपकारी जीवन भी व्यतीत कर सकता है, दूसरों के मन को प्रसन्न कर सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता है और ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता है, अर्थात ईश्वर को भी वो प्राप्त कर सकता है। ये सारी संभावनाएं मानुष जन्म में ही हैं और किसी जन्म में नहीं है, इसीलिए इसको दुर्लभ कहा जाता है। तो यदि हमने इस बात को गंभीरता से नहीं सोचने की कोशिश की और वहीं अपना एक साधारण जीवन जो हर परिवार में व्यतीत होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं, फिर उसके जीवन की सफलता कामना करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, सफलता किस रूप में कि ये ठीक ठाक पैसा कमाने वाला हो जाए और सुखी जीवन व्यतीत करे। लेकिन इस विज्ञान को वो नहीं जानते जिसको हम सुखी जीवन की कल्पना कह रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, वो वास्तव में सुखी जीवन है नहीं, वो 5 विकार से युक्त जीवन है, इसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। ये स्वाभाविक मनुष्य की गति होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रिय भोग आपको मजबूर कर देते हैं कि संसार की वस्तुओं का, संसार के व्यक्तियों का उपभोग करने के लिए, उनसे सुख प्राप्ति की कोशिश करने के लिए। और सुख प्राप्ति की कोशिश आदमी कितनी भी कर ले, क्योंकि पूरा का पूरा संसार ये द्वंद्व रूप है, यहाँ सुख के साथ दुख मिला हुआ है, दिन के साथ रात मिली हुई है, चैन के साथ बेचैनी मिली हुई है, हर चीज द्वंद्व रूप है। तो विचार करो कि मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है? संसार में आकर मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। सत्य बात यह है, देखने में सुखी लग सकता है, जैसे एक राजा का जीवन है, बड़ा सुखी लगता होगा। आजकल भारतवर्ष में भारत का प्राइम मिनिस्टर है मोदी, कुछ लोग कल्पना करते होंगे कि मैं मोदी बन जाऊं, मोदी जैसा स्थान मुझे मिल जाए। लेकिन विचार करो, यदि सुख की बात करते हो तो क्या मोदी के पास कोई वक्त है सुख भोगने का? लोग यदि उसको मानते हैं तो इसलिए नहीं मानते कि वो सुख भोगता है, इसलिए मानते हैं कि वो दूसरों के सुख की सोचता है, अर्थात परोपकार की बात वो सोचता है। तो मनुष्य जीवन में सुख की सोचकर सुख के लिए जीवन व्यतीत करना, ये वास्तव में अविवेकी जीवन है। इसलिए ये वाणी कह रही है कि विवेकहीन जो मानुष हुई, पशु समान जीवन सुख हुई। वास्तव में अध्यात्म के साथ से वो पशु जीवन है, जहां अकल नाम की चीज कोई होती ही नहीं। पशु में क्या अकल होती है? कोई निर्णय कर सकता है पशु? क्योंकि मनुष्य के पास अकल है। माँ जी कहते थे, प्रेमी मानव जन्म में बुद्धि के अंदर चेतना बहुत ज्यादा है, ये जीव यदि कोशिश करे तो ईश्वर प्राप्ति भी कर सकता है, ईश्वर बन भी सकता है। तो इतनी मेरी संभावना है। इसीलिए सारा मार्गदर्शन इसी काम के लिए होता है कि मैं प्रभु की याद सही रूप में कैसे कर सकूं, उसमें सफलता कैसे मिले और ये मेरा मानव जीवन भी सफल हो जाए और परम शांति लेकर संसार से विदा। उसके लिए वाणी मार्गदर्शन कर रही है, बिन मारक जो शब्द ध्याई, सकल जतन अकारथ जाई। इस मार्ग में चलने में जो गलती हमसे होती है, अक्सर होती है, उसके लिए वाणी चेतावनी दे रही है कि बिन मारग जो शब्द ध्याई, सकल जतन अकारथ जाए। सब कहते हैं हम राम का नाम जाप कर लें, कृष्ण का नाम जाप कर लें, जो जिसको पसंद है कर सकता है, सब में कुछ ना कुछ प्रगति होगी ही उसकी। लेकिन जब आप एक निश्चित सफलता चाहते हो तो निश्चित प्रोसेस भी आपको अपनाना पड़ता है। कोई एक होशियार स्टूडेंट है तो अच्छे नंबर लाना चाहता है तो किसी अच्छे टीचर से वो पढ़ने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, अच्छे स्टूडेंट से दोस्ती करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा कि मैं कैसे सफलता प्राप्त करूं। तो वही कह रहे हैं कि बिन मार्ग जो शब्द ध्याय, इसका क्या मतलब हुआ? शब्द का मतलब यहां पर क्या है, जो उपासना के लिए हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं या किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो उसको शब्द करके यहां पर कहा गया। तो बिन मार्ग अर्थात यदि ईश्वर प्राप्ति करनी है तो उसका एक निश्चित मार्ग है, निश्चित मेथड है उसका। वैदिक काल से जितने भी शास्त्रों की रचना हुई, जितने भी सत्पुरुष आए जिनको हम, जिनके इतिहास को हम जानते हैं, तो वहां ये बात है, मनमानी नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है बड़ी अच्छी बात है, काथा गागा सीख रहा है वो भी बड़ी अच्छी बात है, भाषा सीख रहा है वो भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाषा सीखने के बाद कोई डिग्री हासिल करना चाहता है तो उसको एक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई कुछ भी पढ़ना बुरी बात नहीं है, इसलिए कुछ भी किसी भी तरीके से ईश्वर का नाम लेना बुरी बात नहीं है, आपकी प्रगति कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। लेकिन यदि आप सफलता चाहते हो, ईश्वर दर्शन चाहते हो, ऐसे संस्कार बनाना चाहते हो जो इस जन्म में जो आपने बना लिए, अगले जन्म में जब आपको प्राप्त हो तो आगे की प्रगति आपकी निरंतर होती रहे, ये कमाई आपकी व्यर्थ ना जाए, तो उसके लिए ये वाणी कह रही है कि बिन मार्ग जो शब्द है, बिना सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के यदि आपने अध्यात्म के मार्ग को अपना लिया तो कहते हैं कि सकल जतन अकारथ जाए, तब आपको अंदर कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। बात यह अंदर की प्रगति है, अंदर का जो मार्ग है जो ईश्वर तक ले आपको ले जाता है, उसमें आपकी प्रगति संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि सकल यतन अकारथ जाए। इसका दूसरा मीनिंग ना लगा ले हम कि हम तो राम का नाम जाप करते क्या बेकार यत्न जा रहा है, वही सब कुछ नहीं कह रहा है कि आपका यत्न बेकार जा रहा है। यदि आप एक सफलता चाहते हो, ईश्वर प्राप्ति चाहते हो, तब ये आपका प्रयत्न बेकार। इसीलिए पूर्ण गुरु के ज्ञान को सीखना होता ही है। ये वाणी प्रकट हुई, इसी के अंदर महामंत्र भी है, उसकी व्याख्या भी है, और जो महाराज जी दिशा दिया करते थे प्राणपान की साधना की, उसका मार्ग भी इसके अंदर है, वहां उसकी चेतावनी भी है कि गुरु से ही ये प्राप्त करना चाहिए, ये कंडीशन है उसके आगे। तो हम मनमानी सतमार्ग में नहीं कर सकते, इसीलिए जीवन में पूर्ण गुरु का धारण करना लाजमी। शरीर रूप में आप उसका संग ना भी कर पाए, लेकिन उसका जो ज्ञान का संग है वो आपने करना ही होता है। ज्यो ज्यो सुरती श्वास में धारे, कोट पाप मन का भयो छाए। तो आप देखिए, ज्यो ज्यो सुरती श्वास में धारे, कोट पाप मन का भयो छारे। मन के करोड़ों पाप क्षीण हो जाते हैं, मिट जाते हैं, यदि आप सतपुरुष की बात मानकर, उसकी बात को समझकर जब आप साधना करते हैं। तो ज्यो ज्यो सुरती श्वास में धारे, इसका तो सीधा अर्थ तो ये निकलता है कि श्वास जो हमारी आ जा रही है, इस पर मेरी बुद्धि अर्थात बुद्धि की जो चेतना है जिसको सुरती कहते हैं, उस चेतना को मैं श्वास के साथ लगा लूं, ये वाणी मार्गदर्शन कर रही है ना। ये मार्गदर्शन नहीं है इसका। इस मार्गदर्शन में वो जो श्वास शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक भेद छिपा हुआ है। इसी को ही श्वास सुरत योग भी कहते हैं, प्राणपान की साधना भी कहते हैं। लेकिन महाजी जो दीक्षा दिया करते थे तो वो एक नाम दिया करते थे, नाम का जाप वो श्वास के साथ करने को कहते थे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए आप यूं समझ लें, जैसे राम का नाम है, अब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो कल्पना कर रहे हैं अंदर से कि रा की साउंड निकल रही है उसमें से या रा की साउंड उसमें से उसमें आ रही है। श्वास जब बाहर निकाल रहे हैं तो आप कल्पना कर रहे हैं कि मां की साउंड बाहर निकल रही है। तो श्वास आप ले रहे हैं लेकिन ध्यान कहां है आपका? श्वास के साथ नाम पर ध्यान है। तो श्वास और नाम ये दोनों मिलकर चल रहे हैं। तो इसको प्राणापान की साधना कहते हैं, इसको योग मार्ग भी कहते हैं। तो उसके लिए केवल इंडिकेशन है श्वास, लेकिन वाणी पढ़ने वाले इसका अर्थ ये निकाल लें कि श्वास के साथ मैं जाप श्वास मैं लेता रहूं, उस पर ध्यान रखूं, मेरा योग मार्ग तय हो जाएगा। ना, ये मतलब नहीं है। तो वाणी में शब्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन उसके पीछे एक गहरा राज भी छुपा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन भी वाणी में मौजूद है। इसीलिए पूर्ण बुद्धि की बात को सीखना, उसको वैसा ही मानना, तभी हमारा कल्याण संभव है। इसीलिए जो जो गुरु वाक्य के अनुसार, गुरु दीक्षा के अनुसार उस नाम का श्वास के साथ जाप करता है तो उसके मन की क्या हालत हो जाती है? मन इतना पवित्र होने लगता है, इसके संस्कार इतने क्षीण हो जाते हैं कि जन्म जन्मांतर का जो मन का एक स्वभाव है उसमें परिवर्तन आने लगता है। ये तमोगुणी मन सतोगुणी बन जाता है। इसीलिए जो गुरु आज्ञा है या जो सिद्ध मंत्र है उसका जाप आपके मन की क्या सफाई करता है, इस भेद को यह वाणी बता रही है। कोट पाप मन का भयो छारे। तो इस पाप के कारण, इस भोग विलास के संस्कारों के कारण मन के अंदर चंचलता ज्यादा रहती है, संकल्प विकल्प ज्यादा उठते हैं। इसीलिए आप शिकायत करते हैं कि मैं घंटा जाप तो करता हूं लेकिन क्या करो, मन तो लगता ही नहीं। एक घंटा जाग करते हो, दिन भर भोग विलास संसार का कितना करते हो वो गिनकर तो देखो जरा। तो एक लक्ष्य लेकर जब चले हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी साधन है वो सब अपनाना पड़ेंगे ना। महाजी सादगी से क्यों प्रारंभ कर रहे हैं कि मैंने भोग विलास को एक जिंदगी की बर्बादी का साधन समझना है, क्योंकि इससे पांच विकार उदय हो रहे हैं, पांच विकार इससे पैदा हो रहे हैं। तो जिसने पांच इंद्रियों के भोगों को अपना जीवन का लक्ष्य बना रखा है उससे कितने पाप होते होंगे, कितने मन के संस्कार उसके बिगड़ते होंगे इस जन्म में, आप विचार करके देखें। तो इसीलिए प्रोसेस केवल ये नहीं कि आपने नाम सुन कर लिया, दैनिक दिनचर्या आपकी क्या चल रही है, इसीलिए वो सारा का सारा ज्ञान हमको धारण करना पड़ता है, तब जाकर हमारी आगे प्रगति होती है। तो माँ जी कहते हुए थे प्रेमी, एक दिन देवराज जी बैठे हुए थे माँ जी के पास और जगाधरी की बात है, उस समय ये पेड़ पौधे बाएं दाएं जो माँ जी कुटिया है उस पर नया नया प्लांटेशन हुआ था। और प्रेमी अपनी चादर ओढ़े, जो भी दीक्षित प्रेमी थे वहां बैठे बैठे अपना जाप कर रहे थे। तो देवराज जी बोले, माँ जी आपने तो सबको योगी बना दिया। माँ जी कहते हैं, प्रेमी ये पता नहीं कौन कौन सी योनि से आए हैं, कोई मजदी योनि से आया है, कोई खोते दी योनि से आया है, इनको अपने अपने संस्कार कट लेने दे। तो सतपुरुष इस राज को जानते हैं, हम नहीं जानते। तो संस्कार कटते हैं गुरु आज्ञा का पालन करने से, उनके मंत्र का जाप करने से। तो कितना गहरा राज है ईश्वर भजन का। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार हमारे मन के पाप नाश होते हैं तब आगे क्या मिलता है हमको? चेतन बुद्ध भई नाम रस खाए, अंतर बाहर समरूप समाए। हम जब जाप करते हैं तो क्या होता है बुद्धि का? बुद्धि जो है, या जिसको सुरत भी कहते हैं, वो काम में लगी रहती है, नाम में लगने की कोशिश करती है लेकिन लगी रहती है मन के साथ। मन में क्या चलता है हम सब जानते हैं, संसार की चंचलता, संसार के बातें, संसार के काम, इसी में मन फंसा रहता है। इसीलिए सिमरन करने के बाद भी आपको शांति प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो गुरु के पूरी बात को मानता है और साधना उनके कहने के अनुसार, मार्गदर्शक अनुसार करता है, उसकी क्या प्रगति होती है, कहां तक प्रगति होती है, उसके लिए वाणी कह रही है, चेतन बुद्ध भई नाम रस खाए, अंतर बाहर समरूप समाए। ये कौन सा नाम रस है? ये कौन सी चेतन बुद्धि है? यहां उसकी बात हो रही है कि जहां बुद्धि चेतना रूप ही रह जाती है, मन के बंधन उसके सब खत्म हो जाते हैं और वो नाम में स्थित हो जाती है जिसको हम सतनाम कहते हैं, जिसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम वाहेगुरु कहते हैं, ये सब उसी के नाम। तो नाम की वो स्थिति जो अंतिम अवस्था है, जो मोक्ष अवस्था है, ये बुद्धि, ये शुद्ध चेतना बुद्धि की समय रह जाती है और मन का बंधन इसका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वहां कोई एक संकल्प भी उदय होता है, होता ही नहीं है, उदय होने की संभावना भी नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति को ही सहज समाधि कहा जाता है। ये वो स्थिति पहुंच जाती है बुद्धि की, चेतन बुद्ध भई नाम रस का, ईश्वर चेतन रूप है ना, तो बुद्धि भी चेतन रूप हो जाती है। अभी चेतन रूप क्यों नहीं है? है अभी भी चेतन रूप, लेकिन मन के बंधन में। तो मन जो मेरी बेचैनी का कारण है, मेरे जीवन के फेलियर का कारण है, उसको मैं स्ट्रांग कर रहा हूं भोग विलास बढ़ाकर। इसलिए वाणी कह रही है कि मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे अंबार, प्रारब्ध वर्ष तुझको भोग विलास प्राप्त हो भी जाए तब भी तुझको भोगने का हुक्म नहीं है। मर्यादा का जीवन जीने की ही का ही मार्गदर्शन है ताकि तू ईश्वर भजन करके अपना जीवन सफल कर सके। तो क्या स्थिति हो जाती है कि चेतन बुद्ध भई नाम रस खाए, अंतर बाहर सम रूप समाए। तो अंदर और बाहर सम रूप हो जाता है, अर्थात अंदर भी ईश्वर है और बाहर भी ईश्वर है। सारा संसार जो इतनी वैरायटी है, ये ईश्वर की चेतना के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को समता स्थिति भी कहते हैं, उसी को मोक्ष स्थिति भी कहते हैं। अब बताइए, ये मेरे ही अनुभव है, गुरु के ही अनुभव है, और जो भी भक्त गुरु की बात मानकर उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है, इस जन्म में वो मार्ग पूरा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, पुरुषार्थ उसने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार किया है, तो ऐसे संस्कार लेकर यहां से जाता है कि अगला जन्म जब उसका होता है तो बचपन से ही जहां से उसने अपनी क्लास छोड़ी थी वहीं से अगली क्लास उसके नए जन्म में स्टार्ट होती है। तो साधना बेकार नहीं आती, वो कर्मफल बेकार नहीं आता। इसीलिए ये सारा जो सत्पुरुष का मार्गदर्शन है, ये बड़ा गहरा होता है। अंत में कहते हैं, कर्म विखेपत त्याग के जब सतनाम को खाए, मंगत भक्ति ज्ञान ये सब जीव के भ्रम बिन साए। तो कर्म विखेपत त्याग के, कर्म विखेपत त्याग, कर्म के कारण जो विक्षेप मन के अंदर पैदा होता है उसको कहते हैं कर्म विखेपत। हम कर्म फल में ही तो फंसे रहते हैं या कर्म करने में फंसे रहते हैं, और जिसके कारण मन के अंदर बेचैनी हमारी निरंतर बनी रहती है, और जिसके कारण ये जीव या बुद्धि बेचैन रहती है। तो बेचैनी जब आप से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करोगे, उस विज्ञान को नहीं समझोगे, तो सतनाम में मन लगेगा कैसे काम पर? तो इसीलिए कर्म विखेप त्याग के मतलब ये है कि तूने कर्म करते करते संसार में रहते रहते एक मार्ग अपनाना है, जो महाराज जी ने पांच नियम के रूप में आपके सामने रख दिया, सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्संग्रह, और इसका विज्ञान भी समझा दिया। ये सारा पांचों आइटम जो है, पांचों नियम जो है, वो इसी वास्ते हैं कि धीरे धीरे ये कर्म का जो विक्षेप मन के ऊपर पड़ता है या बुद्धि के ऊपर पड़ता है, इस विक्षेप से आपका छुटकारा धीरे धीरे होता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है ये छुटकारा, और एक दिन मन आपका निष्काम हो जाता है, संसार के कोई भोग की कामना इसमें रहती ही नहीं है, ये इतना शुद्ध हो जाता है। उस समय पता लगता है कि इस संसार में जो इतनी बेचैनी थी, यहां तो शांति के अलावा कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं। जो बेचैनी का सागर संसार था, ये शांति का सागर हो जाता है। यहाँ रोम रोम में प्रभु फिर विराजमान होते हैं, तो कहते हैं कि मंगत भक्ति ज्ञान ये सब जीव के भ्रम बिन साए। जीव के जितने भी भ्रम है कि संसार में सुख है, संसार में जीव की सफलता है, ये भ्रम है। कोई व्यक्ति मुझे सुखी कर देगा, कोई वस्तु मुझे सुखी कर देगी, ये भ्रम है। और अंत में एक मूल भ्रम जो है, जो कर्तापन कहते हैं, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। बुद्धि की यह अवस्था हो जाती है कि वो कर्तापन का ही त्याग कर देती है, अर्थात उसका जो सारा भ्रम है वो नष्ट हो जाता है और ये मोक्ष अवस्था लेकर समता अवस्था लेकर सम अवस्था लेकर संसार से विदा होता है। ओम ब्रह्म सत्यम।